ईश्वरीय आतिथ्य।
श्रोताओ, रमजान से विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज रमजान मुबारक की 26 तारीख है। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो हमारी इबादतों और उपासनाओं को स्वीकार कर ले, हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमारे थोड़े से प्रयास को स्वीकार कर ले और हमारी कमियों की अनदेखी कर दे।
ईश्वर ने अपने बंदों से प्रेम और स्नेह के कारण महीनों में से एक महीने और रातों में से एक रात का सर्वश्रेष्ठ महीने और रात के रूप में चयन किया है। इस सर्वश्रेष्ठ रात में इबादत को ईश्वर ने 1000 महीनों तक की इबादत से बेहतर करार दिया है।
हाँ, शबे कद्र की स्थिति और उसकी महानता के दृष्टिगत इस रात का पुण्य एवं आध्यात्मिक लाभ 30,000 रातों से बेहतर है। ईश्वर ने शबे कद्र को इस रमजान के महीने में रखा है ताकि लोग अतीत में अपनी इबादतों की कमियों को इसमें पूरा कर लें और ईश्वर से लोक परलोक में अपनी भलाई के लिए दुआ करें। शबे कद्र रमजान की अंतिम 10 रातों में से एक है, लेकिन ईश्वर ने उसे पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया है।
इतिहास में उल्लेख है कि किसी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया, शबे कद्र कौन सी रात है? उन्होंने फरमाया, मुझे कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए इसे तुमसे छुपा कर रखा है, इसलिए कि अगर वो इसे स्पष्ट कर देता तो लोग उसी रात में इबादत करते और उसके अलावा इबादत नहीं करते।
इसका एक रहस्य के रूप में होना इसलिए है ताकि लोग अन्य दो रातों को भी शबे कद्र समझें और भले कार्य करें और इबादत करें और बुराइयों से दूर रहें।
इन रातों की विशेषता ईश्वर से क्षमा याचना और तौबा करना है। इन रातों में क्षमा याचना और तौबा की सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि पाप इंसान के दिल को काला और दूषित कर देते हैं। दूषित बर्तन की भांति दूषित दिल भी ईश्वर के प्रकाश का स्थान नहीं बन सकता। यही कारण है कि उसकी कोई इबादत और दुआ कबूल नहीं होती।
निस्संदेह इस रात में वो तौबा और क्षमा कबूल होती है जो कुरान के मुताबिक शुद्ध दिल से मांगी जाए। कुरान में उल्लेख है कि हे वो लोगों जो ईमान लाए, ईश्वर से क्षमा मांगो, शुद्ध क्षमा। इतिहास में है कि जब मुआज़ बिन जबल ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसो तौबा के बारे में पूछा तो हजरत ने फरमाया, नसो तौबा वो तौबा है कि इंसान किसी पाप से तौबा करे और उसके बाद किसी भी स्थिति में वो पाप न करे। वास्तव में यह तौबा इंसान के भीतर ऐसी क्रांति जगाती है कि गुनाह की ओर वापसी के समस्त रास्तों को बंद कर देती है।
क्षमा और तौबा के बाद दुआ और ईश्वर से मांगने की बारी आती है। दुआ की एक बेहतरीन स्थिति मिलजुल कर और सामूहिक रूप से दुआ करना है। इसलिए इस बात का प्रयास करें कि इन रातों में मस्जिदों में उपस्थित हों। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईश्वर का हाथ समूह पर है। कद्र का दिन भी उसकी रात की भांति उसी प्रकार महत्वपूर्ण है और अन्य दिनों से भिन्न है। इसलिए उचित होगा कद्र की रात और दिन को शिक्षा के ग्रहण, कुरान की तिलावत और नमाज एवं ईश्वर का नाम जपने में बिताया जाए।
रमजान का महीना बरकत, रहमत और क्षमादान का महीना है। ईश्वर इस महीने में अपने बंदों के पापों को माफ़ कर देता है और अच्छे कामों के बदले जैसे कि रोज़ा रखने, इबादत करने, कुरान की तिलावत करने और दान देने स्वर्ग प्रदान करता है। इसलिए जिन लोगों पर उनके पुण्य के कारण ईश्वर की कृपा होती है उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का पुण्य नहीं कर रहा है तो वो खुद पर स्वर्ग के द्वार को बंद कर रहा है।
इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान के महीने के चांद की ओर देखा तो काबे की ओर रुख करके फरमाया, हे ईश्वर, इस महीने को हमारे लिए नया बना दे। सुरक्षा के रूप में, ईमान के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, कल्याण के रूप में, आजीविका के रूप में, बीमारियों से बचने के रूप में, कुरान की तिलावत करने और नमाज व रोज़े के रूप में, हे ईश्वर हमें रमज़ान के लिए स्वस्थ रख और रमज़ान को हमारे लिए और हमसे स्वीकार कर ले, यहाँ तक कि रमज़ान का महीना पूरा हो जाए और तू हमें क्षमा कर चुका हो। उसके बाद लोगों की ओर देखकर कहा, हे मुसलमानों, जब रमज़ान का चांद निकल आता है तो शैतानों को जंजीर में बांधकर खींचा जाता है। आसमान, स्वर्ग और रहमत के द्वार खुल जाते हैं और नरक के द्वार बंद हो जाते हैं।
रमज़ान के महीने में ईश्वर शैतान की शक्ति को सीमित कर देता है और भटकाने के उसके मार को कम कर देता है। यही कारण है कि इंसानों का मन और आत्मा ईश्वर की उपासना और उसके आदेशों का पालन करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। लेकिन इसका मतलब पूर्ण रूप से शैतान का असमर्थ हो जाना और लोगों की जिम्मेदारियों का समाप्त हो जाना नहीं है।
वास्तव में रमज़ान का महीना एक ऐसा उचित अवसर है कि जिसमें शैतानों द्वारा इंसानों को भटकाने के रास्तों की पहचान हो जाती है। आयतुल्ला दस्तगैब शैतान और उसका मुकाबला करने के लिए एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, अगर आपके पास ऐसा खाना है जो कुत्ते को बहुत पसंद है, तो अगर आप उसे ढककर भी ले जा रहे हैं तो भूखा कुत्ता दूर से उसकी सुगंध सूंघ लेगा और आपके पीछे चलने लगेगा, इसलिए कि वो भूखा है और उसका मनपसंद खाना आपके पास है। इस स्थिति में आप उसे कितना भी भगाएंगे और डांटेंगे, वो आपका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। इंसान का दिल भी इसी प्रकार शैतान का लक्ष्य है। जिस किसी के दिल में पद, शोहरत, दुनिया और धन की मोहब्बत होगी और दूसरों से ईर्ष्या होगी, वो जबान से शैतान को कितना भी बुरा भला कहे, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, इसलिए कि केवल जबान से शैतान को भगा रहा है और अपने कर्मों से उसे अपने दिल के लिए आमंत्रित कर रहा है। शैतान से बचने के लिए हमें अपने दिल को बुराइयों से पाक साफ करना पड़ेगा।
ईश्वरीय अनुकंपाओं से लाभ उठाना और उसका शुक्रिया अदा करना उस पूंजी की भांति है कि जो पिता अपने बेटे को सौंपता है ताकि वो उससे व्यापार कर सके। अगर वो सही व्यापार करता है और अपनी पूंजी का सही प्रयोग करता है तो पिता उसे अधिक पूंजी प्रदान करता है। लेकिन अगर बेटे ने उस पूंजी को व्यर्थ कर दिया और उल्टे सीधे कामों में उड़ा दिया तो पिता यही कहता है कि क्यों उसे पैसा दूँ, मैं उसका दुश्मन तो नहीं हूँ कि उसे बर्बाद होने और बिगड़ने के लिए पैसा दूँ। उसके बाद वो उसे कोई पूंजी नहीं देता है। ईश्वरीय अनुकंपाएँ भी इसी प्रकार हैं। अगर इंसान ईश्वरीय अनुकंपाओं का महत्व नहीं जानता और उसका आभार व्यक्त नहीं करता है तो ईश्वर उसे अधिक प्रदान नहीं करता है। ईश्वर के वास्तविक बंदे जो कुछ उन्हें प्रदान कर दिया जाता है उस पर प्रसन्न रहते हैं और अपने पालनहार का आभार जताते हैं और समस्याओं में घिरने के बावजूद हमेशा खुद को ईश्वरीय अनुकंपाओं में घिरा हुआ पाते हैं।
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक साथी कहते हैं, मीना में हम हजरत की सेवा में उपस्थित थे। एक फकीर हजरत के पास आया, हजरत अंगूर खा रहे थे और उन्होंने आदेश दिया कि अंगूर का एक गुच्छा फकीर को दे दिया जाए। फकीर ने कहा, मुझे अंगूर नहीं चाहिए, अगर पैसे दें तो बेहतर रहेगा। हजरत ने फरमाया, ईश्वर तुम्हें पर्याप्त मात्रा में दे, और उसे कुछ दान में नहीं दिया। उसके बाद एक दूसरा फकीर आया और उसने सहायता के लिए कहा। हजरत ने केवल अंगूर के 3 दाने उसे दिए। फकीर ने ले लिए और कहा, शुक्र है उस पालनहार का जिसने मुझे रिज्क प्रदान किया। हजरत ने उससे कहा, ठहरो। उसके बाद इमाम ने अपने दोनों हाथों में अंगूर भरे और उसे दान में दिए। फकीर ने लेकर फिर ईश्वर का आभार जताया। इमाम ने फिर उससे कहा, ठहरो, और अपने सेवक से कहा, तुम्हारे पास इस समय कितना पैसा है? उसने कहा, 20 दिरहम। हजरत ने वो सब पैसा फकीर को दे दिया। फकीर ने पुनः ईश्वर का शुक्र अदा किया। हजरत ने फरमाया, यहीं खड़े रहो, और अपनी कमीज उतार कर उसे दे दी। फकीर ने लेकर पहन ली और पुनः ईश्वर का शुक्र अदा किया और इमाम का आभार व्यक्त किया और चला गया। इमाम के साथी का कहना है कि हम समझते हैं کہ اگر وہ فقیر امام کا آبھار نہیں جتاتا اور نرنتر ایشور کا شکریہ ادا کرتا تو وہ بھی نرنتر اسے دان دیتے رہتے۔